एकत्र ज्ञानगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
और इस ज्ञानगोष्ठी में आज हम बात करेंगे लॉरेंस राइट की बहुत ही चर्चित किताब, जिसे पुलित्जर पुरस्कार भी मिला, द लूमिंग टावर, अलकायदा एंड द रोड टू 9/11।
जी हाँ, और ये किताब मतलब सिर्फ 9/11 हमलों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं गहरी है। ये देखती है कि वो विचारधारा कैसे पनपी, कैसे अलकायदा जैसा संगठन बना, और कैसे अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां थीं, एफबीआई और सीआईए, वो आपस में ही उलझी रहीं।
बिल्कुल, उनके बीच की जो खींचतान थी, जो टकराव था, उसने एक तरह से रास्ता बना दिया उस हमले के लिए।
और इसीलिए ये आज भी इतनी जरूरी किताब है ना? मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि आतंकवाद की जड़ें कहाँ होती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में अंदर क्या चलता रहता है।
हाँ, और कैसे सिस्टम की खामियां, या कहिए कि अलग अलग लोगों के अपने मकसद, मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं।
तो चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, पर सबसे पहले लॉरेंस राइट के बारे में थोड़ी बात हो जाए, जिन्होंने इतनी मेहनत से सब कुछ हमारे सामने रखा।
हाँ, लॉरेंस राइट कोई मामूली लेखक नहीं है, वो एक जाने माने खोजी पत्रकार है, द न्यूयॉर्कर के लिए लिखते हैं, और उनकी खासियत है आतंकवाद, मिडल ईस्ट और धार्मिक कट्टरता जैसे पेचीदा विषयों पर उनकी गहरी पकड़।
सुना है इस किताब के लिए उन्होंने 5 साल रिसर्च की।
5 साल और 600 से ज्यादा इंटरव्यूज किए। आप सोचिए, खुफिया अधिकारी, एफबीआई एजेंट्स, यहां तक कि अलकायदा से जुड़े रहे लोगों से भी उन्होंने बात की।
कमाल है, मतलब इतने अलग अलग नजरिए इकट्ठा करना, तथ्यों को परखना और फिर उसे एक कहानी की शक्ल देना, ये तो बहुत मुश्किल काम है।
बिल्कुल, और यही राइट की खूबी है। वो सिर्फ तथ्य नहीं रखते, वो किरदारों को सामने लाते हैं, उनकी सोच क्या थी, उनकी मजबूरियां क्या थीं,
राइट।
उनकी कमजोरियां क्या थीं।
हाँ, और वो दोनों पक्षों को दिखाते हैं, है ना? मतलब अमेरिकी खुफिया तंत्र के अंदर क्या चल रहा था वो भी,
और दूसरी तरफ इस्लामी दुनिया में वो गुस्सा, वो विचारधारा कैसे पनप रही थी वो भी। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर उन्होंने किया, तभी ये किताब इतनी विश्वसनीय लगती है।
अच्छा, तो अब किताब पर आते हैं, द लूमिंग टावर, ये है क्या असल में?
देखिए, है तो ये खोजी पत्रकारिता, पर पढ़ने में किसी जासूसी नॉवेल या थ्रिलर से कम नहीं लगती।
हाँ, और इसमें जैसे दो कहानियां साथ साथ चल रही हैं।
बिल्कुल, एक पटरी पर है इस्लामी कट्टरपंथ का बढ़ना, अलकायदा का बनना और उसके हमले,
और दूसरी पटरी पर हैं अमेरिका की वो बड़ी बड़ी एजेंसियां जो इसे रोकने की कोशिश तो कर रही थी पर आपस में ही लड़ रही थी।
और किताब का जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि 9/11 कोई मतलब आसमान से गिरी हुई घटना नहीं थी।
हाँ, ये अचानक नहीं हुआ।
नहीं, ये सालों से जो विचारधारा पनप रही थी, जो संगठन मजबूत हो रहा था, और सबसे बढ़कर अमेरिका की अपनी एजेंसियों, खासकर सीआईए और एफबीआई के बीच जो तालमेल की भयानक कमी थी, जो टकराव था, उसका नतीजा था। उनके रोल्स और गोल्स बिल्कुल अलग थे।
ये किताब हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है ना? मतलब 1940 के दशक के मिस्र से शुरू होती है कहानी।
हाँ, सैयद कुतुब से, एक विचारक थे जो पश्चिमी सभ्यता के बहुत खिलाफ हो गए थे। फिर 80 के दशक का अफगान युद्ध, जो एक तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। फिर 90 में अलकायदा बना, उसके हमले हुए, और फिर 9/11 की प्लानिंग और वो दिन।
और ये नाम द लूमिंग टावर, ये सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स की बात नहीं है।
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक प्रतीक है पश्चिमी दुनिया की उस ताकत का, जो बाहर से बहुत मजबूत दिखती थी पर अंदर से कमजोर थी, और एक ऐसे खतरे को देख ही नहीं पा रही थी जिसे वो लगातार मतलब कमांक रही थी।
तो चलिए इस कहानी के कुछ अहम किरदारों और मोड़ों को जरा और करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसके क्या रोल थे, क्या मकसद थे। कहानी की वैचारिक नींव, जैसा आपने कहा, सैयद कुतुब ने रखी।
हाँ, मिस्र के बुद्धिजीवी थे, 1940 के दशक में अमेरिका गए थे, और वहाँ के समाज से, वहाँ की लाइफस्टाइल से उन्हें बड़ी नफरत हो गई। उन्हें लगा कि ये समाज बस पैसे के पीछे भागता है, इसमें कोई रूहानियत नहीं है।
और इसी नफरत ने उनकी विचारधारा को जन्म दिया।
बिल्कुल, उनकी किताब है माइलस्टोन्स, जो एक तरह से हिंसक जिहाद का मैनिफेस्टो बन गई। तो कुतुब का रोल था उस विचारक का जिसने आने वाले संघर्ष की जमीन तैयार की। उनका मकसद था पश्चिमी असर को जड़ से उखाड़ना।
और फिर आते हैं आयमान अल जवाहिरी, इन पर कुतुब का बहुत असर था।
हाँ, जवाहिरी पेशे से डॉक्टर थे मिस्र में, बाद में अलकायदा के, कह सकते हैं, चीफ स्ट्रेटजिस्ट बने, कहते हैं मिस्र की जेल में उन पर बहुत जुल्म हुए, जिससे वो और भी ज्यादा कट्टर हो गए।
तो अगर कुतुब विचारक थे तो जवाहिरी ने उसे एक्शन में बदला।
एक अमीर सऊदी परिवार से था, शर्मीला सा लड़का था शुरू में, लेकिन अपने देश में जो पश्चिमी प्रभाव बढ़ रहा था, खासकर अमेरिकी फौजों की मौजूदगी, उससे वो बहुत नाराज था। शुरू में उसका रोल था पैसे मुहैया कराने वाले का, ऑर्गेनाइजर का।
अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई ने उसे एक मंच दे दिया।
बिल्कुल, वहीं उसकी मुलाकात जवाहिरी से हुई और वो जोड़ी बन गई। बिन लादेन का पैसा, उसका करिश्मा, संगठन बनाने की ताकत और जवाहिरी की विचारधारा, उसकी प्लानिंग, यही उन्होंने अलकायदा मतलब द बेस की नींव रखी।
और उनका लक्ष्य अब साफ था, अमेरिका।
हाँ, अमेरिका उनका मुख्य निशाना बन गया। तो देखिए, एक तरफ ये संगठन बन रहा था अपनी विचारधारा, अपने नेता, अपने लक्ष्य के साथ। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ क्या हो रहा था अमेरिका में, खासकर उन एजेंसियों में जिन्हें इसे रोकना था।
हाँ, यही कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा उलझा हुआ पहलू सामने आता है। और यहाँ एक बड़ा नाम है, जॉन ओनील का, FBI के काउंटर टेररिज्म चीफ।
जॉन ओनील बहुत काबिल अफसर थे, जुनूनी थे, लेकिन उतने ही अड़ियल भी। उनका रोल था उस शिकारी जैसा जो अलकायदा के खतरे को शायद सबसे पहले और सबसे साफ देख रहा था।
लेकिन वो सिस्टम की लड़ाइयों में फंस गए थे।
बिल्कुल, उनका लक्ष्य था अलकायदा को पकड़ना, उन पर केस चलाना, लेकिन उन्हें अपनी ही सरकार के दूसरी एजेंसियों से लड़ना पड़ रहा था।
1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बॉम्बिंग से लेकर फिर अफ्रीका में दूतावासों पर हमले, US कोल पर हमला, ओनील इन सबकी जांच में आगे थे।
हाँ, लेकिन हर बार उन्हें CIA से जूझना पड़ा। यहीं पर वो जो आपने कहा ना, रोल और गोल का टकराव, वो सबसे साफ दिखता है।
कैसे? मतलब FBI और CIA के लक्ष्य इतने अलग कैसे हो सकते थे?
देखिए, FBI का रोल है कानून लागू करना, उनका काम है सबूत जमा करना, केस बनाना, मुजरिम को अदालत तक ले जाना।
हाँ, उनका लक्ष्य है सजा दिलवाना।
जबकि CIA का रोल है जासूसी, खुफिया जानकारी जमा करना। उनका पहला लक्ष्य होता है अपने सोर्स को बचाना, अपनी जानकारी को सीक्रेट रखना, भले ही वो जानकारी किसी केस को सुलझाने में कितनी ही मदद क्यों ना करे।
अच्छा, तो जानकारी होते हुए भी वो शेयर नहीं करते हैं?
अक्सर नहीं। CIA की एक खास यूनिट थी एलेक्स स्टेशन, जो सिर्फ बिन लादन पर काम कर रही थी, लेकिन वो FBI से जरूरी बातें छुपा लेती थी। USS कोल हमले की जांच में तो ये बात खुलकर सामने आ गई।
राइट, बताते हैं कि कैसे ओनील की टीम को अहम जानकारी नहीं दी गई।
हाँ, कहा गया कि जानकारी को हथियार की तरह नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी की तरह देखा जा रहा था। लक्ष्य इतने अलग थे कि तालमेल हो ही नहीं पाया।
और इसी सब के बीच वो सबसे बड़ी चूक हुई जो सीधे 9/11 तक ले गई, जनवरी 2000 मलेशिया में अलकायदा की मीटिंग।
हाँ, CIA को पता चला कि उस मीटिंग में शामिल दो लोग, खालिद अल मेधार और नवाफ अल हज़मी, अमेरिकी वीजा लेकर अमेरिका आ चुके हैं। ये दोनों जाने पहचाने अलकायदा मेंबर थे।
CIA को पता था और उन्होंने FBI को नहीं बताया?
नहीं बताया, उन्होंने उन्हें अमेरिका तक ट्रैक किया, लेकिन FBI को खबर नहीं दी। शायद वही डर कि FBI जांच शुरू करेगी तो उनके ऑपरेशन में दिक्कत आएगी।
तो नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये दोनों आतंकवादी जो बाद में 9/11 के हाईजैकर्स बने, लगभग 1.5 साल तक अमेरिका में कैलिफोर्निया में खुलेआम घूमते रहे, फ्लाइट स्कूलों में ट्रेनिंग लेते रहे, और FBI, जिसका काम उन्हें पकड़ना था, उसे पता ही नहीं था।
ये तो अविश्वसनीय लगता है। यहीं पर शायद 9/11 को रोकने का आखिरी मौका गवा दिया गया।
बिल्कुल, सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया।
और जॉन ओनील, वो इतने निराश हो गया कि उन्होंने FBI छोड़ दी?
हाँ, अगस्त 2001 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए विडंबना, उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सिक्योरिटी चीफ की नौकरी ज्वाइन कर ली।
ओहो।
और फिर 11 सितंबर 2001 की सुबह वो हमला हुआ। जॉन ओनील, जिसने सालों अलकायदा का पीछा किया, वो उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उस हमले में मारे गए।
ये कहानी सच में झकझोर देती है। उनकी कहानी अपने आप में इस पूरी त्रासदी का, इस सिस्टम की नाकामी का, इन टकराते हुए रोल्स और गोल्स का एक दुखद प्रतीक है।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी पड़ताल से कुछ बड़े सबक या मुख्य विषय निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले क्या आता है? मेरे लिए तो ये जो ब्यूरोक्रेसीज की आपसी लड़ाई है, ये सबसे ऊपर है।
हाँ, ये जो संस्थाओं की आपसी खींचतान होती है CIA और FBI के बीच, वो जो दीवार थी, उनके जो अलग अलग मकसद थे, वो शायद 9/11 का सबसे बड़ा कारण बने, जानकारी का साझा ना होना।
और ये सिर्फ खुफिया एजेंसियों की बात नहीं है, है ना? मतलब किसी भी बड़ी कंपनी में, सरकारी दफ्तर में,
कहीं भी, जब टीमें या डिपार्टमेंट एक दूसरे से जानकारी छुपाते हैं, अपने अपने गोल को ऊपर रखते हैं, तो नतीजा बुरा ही होता है। एक कॉमन गोल, एक साझा लक्ष्य का ना होना बहुत खतरनाक है।
बिल्कुल। दूसरा अहम मुद्दा है विचारधारा की ताकत। अलकायदा सिर्फ कुछ क्रिमिनल्स का झुंड नहीं था।
नहीं, उनके पीछे एक मजबूत विचारधारा थी, सैयद कुतुब से लेकर जवाहिरी तक। यही उनकी वो जो कट्टरता थी, वो जो कुछ भी कर गुजरने का जज्बा था, उसका कारण थी। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, चाहे वो दुनिया के लिए कितना भी भयानक क्यों ना हो।
तीसरा, आपने किरदारों की बात की थी। ये कहानी सिर्फ नीतियों की नहीं, लोगों की है।
हाँ, उनके अपने फैसले, उनकी इच्छाएं, उनकी कमजोरियां। जॉन ओनील का वो जुनून और गुस्सा, बिन लादेन का वो करिश्मा और उसकी नाराजगी, जवाहिरी की वो इंटेलेक्चुअल कट्टरता, इन सब ने कहानी को मोड़ दिया। इतिहास ऐसे ही बनता है, इंसानों से।
चौथा पॉइंट, छूके हुए मौके और शायद सांस्कृतिक समझ की कमी।
बिल्कुल, अमेरिका ने दुश्मन को समझने में बहुत देर कर दी, उसकी ताकत को, उसके इरादों को, उसकी विचारधारा को कम आंका। कई चेतावनियां मिली पर उन्हें नज़रअंदाज किया गया। किसी दूसरी सोच या संस्कृति को ना समझ पाना, ये बहुत भारी पड़ सकता है। उनके गोल क्या है, यही नहीं समझा गया।
सही बात है। तो ये तो हुए कुछ बड़े विषय। किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो एकदम से दिमाग में रह जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको खास तौर पे याद हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे राइट लिखते हैं FBI CII की उस लड़ाई पर, उसका सार कुछ यूं है कि CIA के पास वो जानकारी थी जो पहेली सुलझा सकती थी, और FBI के पास उस पर एक्शन लेने का अधिकार था, लेकिन उनके बीच की दीवार किसी जेल की दीवार से भी ज्यादा मोटी और ऊंची थी। ये सीधे सीधे सिस्टम फेल होने की बात है।
हाँ, जहां अलग अलग रोल एक कॉमन गोल के आड़े आ गए।
फिर जॉन ओनील की वो हताशा, उनके हवाले से राइट लिखते हैं जैसे ओनील कह रहे हों, निशाना हम हैं और वो आ रहे हैं। सारी इंटेलिजेंस अमेरिका के अंदर एक बड़े हमले की तरफ इशारा कर रही है, मुझे नहीं पता कब कहां, परे होकर रहेगा। एक आदमी है जो अपना रोल निभाना चाहता है, खतरे को देख रहा है, पर सिस्टम उसे काम नहीं करने दे रहा।
और अलकायदा की रणनीति पर भी राइट ने जो लिखा है वो सोचने वाला है। मतलब ये
कि बिन लादेन और जवाहिरी जानते थे कि वो अमेरिका से सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते। उनकी ताकत थी अमेरिका के सिंबल्स पर हमला करना, और उनका असली मकसद था अमेरिका को एक महंगी, लंबी, थका देने वाली लड़ाई में उलझा देना, खासकर मुस्लिम दुनिया में। उनका लॉन्ग टर्म गोल ये था।
और अब सैयद कुतुब की सोच के बारे में भी।
हाँ, कि कुतुब ने अमेरिका को आज़ादी के प्रतीक की तरह नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे समाज की तरह देखा जो बस भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहा है, जिसकी कोई रूहानी बुनियाद नहीं है। यहीं से वो वैचारिक टकराव शुरू होता है जिसका अंत इतना भयानक हुआ।
ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आज के समय में इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या सीख सकते हैं हम इनसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या काम में?
देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो सीधा सबक है, ये जो साइलो में काम करना होता है ना, मतलब अलग अलग खेमों में बंटकर, ये बहुत खतरनाक है। अगर टीमों के बीच बात नहीं होती, जानकारी शेयर नहीं होती और सब अपने अपने टारगेट के पीछे भाग रहे हैं, तो जो बड़ा मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता। एक साझा लक्ष्य और सहयोग बहुत जरूरी है।
और जो लोग नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी मेकर्स,
उनके लिए संदेश है कि किसी भी झगड़े को सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक नजरिए से ना देखें, उसके पीछे की संस्कृति, इतिहास, विचारधारा, मतलब सामने वाले के मकसद क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी ताकत काफी नहीं होती।
खुफिया एजेंसियों के लिए भी सबक है इसमें।
बिल्कुल, सिर्फ डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं है, उसे जोड़ना यानी कनेक्टिंग द डॉट्स और उसका सही विश्लेषण करना ज्यादा अहम है। और इसके लिए अलग अलग स्किल वाले लोग चाहिए, जैसे भाषा जानने वाले, संस्कृति समझने वाले। किताब में अली सूफान जैसे FBI एजेंट का जिक्र है जिनका रोल यही था।
और हम आम लोगों के लिए,
बाल पूछने चाहिए, चीजों को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं देखना चाहिए और बड़ी संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। एक अलर्ट समाज ही ऐसी गलतियों को दोबारा होने से रोक सकता है।
तो कुल मिलाकर इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है आपके लिए?
मेरे लिए तो यही है कि 9/11 जैसी त्रासदी शायद रोकी जा सकती थी, ये कोई होनी नहीं थी या किस्मत का खेल नहीं था, ये सिस्टम की नाकामी थी, अहंकार, बातचीत की कमी और सबसे बढ़कर अलग अलग संस्थाओं और लोगों के टकराते हुए रोल्स और गोल्स का नतीजा था ये।
मैं भी यही मानता हूँ। और लॉरेंस राइट ने वाकई कमाल का काम किया है। इतने मुश्किल और उलझे हुए इतिहास को उन्होंने किरदारों के जरिए इतना पढ़ने लायक बना दिया है। ये सिर्फ अलकायदा की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि जब हम मिलकर काम करने के बजाय आपस में लड़ते हैं और साझा मकसद भूल जाते हैं तो क्या हो सकता है।
मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि दो इतनी अहम एजेंसियां जिनका मकसद देश की सुरक्षा होना चाहिए, वो एक दूसरे पर इतना अविश्वास कैसे कर सकती थी कि सुरक्षा ही दाव पर लग गई। ये तो मतलब संस्थागत अहंकार की हद थी।
और मेरे लिए जॉन ओनील की कहानी सबसे ज्यादा असर करती है। एक अकेला आदमी जो खतरे को देख रहा था, जो अपना रोल निभाना चाह रहा था लेकिन सिस्टम के आगे मजबूर था। उसकी कहानी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की हार। और ये सवाल उठता है कि आज भी हमारे सिस्टम में ऐसे कितने ओनील होंगे जिनकी आवाज सुनी नहीं जा रही।
बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।